हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तभी करिश्मा जी ने कहना शुरू कर दिया था, बेटा शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पिता ने पूरे 15 साल तुमसे दूर रहकर गुजारे हैं, और न केवल तुमसे बल्कि अपनी शक्तियों से भी दूर रहकर गुजारे हैं। जिन्नातों की एक विधि होती है, एक सीमा तय होती है कि अगर पूरे 15 वर्ष पूरे होने तक अपना इंसानी जीवन ठीक नहीं किया तो फिर ये हमेशा हमेशा के लिए इनका इंसानी शरीर मिट जाएगा और इनका जिन शरीर जिन्नातों की दुनिया में चला जाएगा। मुझे लग रहा है इनका समय अब धीरे धीरे पूरा होने लगा है, अगर जल्द से जल्द ठीक नहीं किया तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा कहकर करिश्मा जी पूरी तरह से रोने लगी थीं। वहीं अमरेंद्र जी की आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और उनके शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा था। अब तो अमन की भी आंखों में खून के आंसू आ गए थे। तारा परी भी पूरी तरह से उदास हो चुकी थी, क्योंकि वो इस तरह से अमरेंद्र जी को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। ये एक तरह से मरना ही था। अगर एक बार अमरेंद्र जी का जिस्म पूरी तरह से गायब हो जाता है और जिन्नातों की दुनिया में जिन रूप में चला जाता है तो फिर वो इंसानी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। कहीं ना कहीं वे सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, लेकिन अगर 12 दिनों के अंदर अंदर जिन अंश अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें ठीक कर देता है तो वे ठीक भी हो सकते थे, लेकिन इतना समय उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि उनके पास समय था। अभी तभी करिश्मा जी ने रोते हुए अमन से कहना शुरू कर दिया था, बेटा कुछ भी करो और दादा महाराज के पास जाओ, वे जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे लग रहा है कि अमरेंद्र जी के पास बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं है। ऐसा कहकर करिश्मा जी फूट फूट कर रो दी थीं। उनके खून की लकीरें उनके आंसुओं से निकलकर उनके गले तक जा रही थीं। कहीं ना कहीं तारा भी अब अमरेंद्र जी की इस तरह की हालत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का कितना सारा समय उन लोगों के साथ बिताया था और अमरेंद्र जी को खोजने के लिए न जाने कितनी ही चुनौतियों और मुश्किलों का तारा और करिश्मा जी ने साथ मिलकर मुकाबला किया था, लेकिन अब इस तरह से वो अमरेंद्र जी को जाते हुए नहीं देख सकती थी। तारा परी ने सोचा कि कितने सालों के बाद अमरेंद्र जी अपने परिवार में लौट कर आए हैं और अभी वे कुछ दिन भी सही से नहीं रहे हैं और इस वक्त उनकी उम्र पूरी हो चुकी है और अगर जिन अंश ने उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया तो उनका अंत निश्चित है। वो अब बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी। तभी करिश्मा जी को देखकर अमन ने उन्हें संतोषना देते हुए कहा था, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैं अपने पिता को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर अमन ने तारा और तराना को पकड़ लिया था और तराना को गोद में लेकर तारा परी का हाथ पकड़कर वो अपने कुछ जादुई मंत्रों का उच्चारण करने लगा था और देखते ही देखते वो जिन रूप में होकर सीधा दादा महाराज के पास पहुंच गया था। दादा महाराज के पास जाकर उसने सारी बातें दादा महाराज से कहना शुरू कर दिया था। दादा महाराज भी अब पूरी तरह से उदास हो चुके थे। तारा परी ने देखा था कि दादा महाराज की आंखों में भी खून के आंसू थे। अब तारा परी समझ चुकी थी कि कोई ना कोई बात कुछ ज्यादा ही सीरियस है, वरना दादा महाराज तो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वे इस तरह की छोटी मोटी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन अब इस तरह की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं तारा परी को काफी ज्यादा बुरा सा लग रहा था। तभी दादा महाराज ने तारा परी की ओर देखा था और अमन की ओर देखकर कहने लगे थे, अमन तुम एक काम करो, तुम जाओ और करिश्मा बहू को संभालो और तब तक तराना बेटी और तारा बेटी को यही रहने दो। अब दादा महाराज की बात सुनने के बाद अमन का दिल तो नहीं चाह रहा था कि वो अपनी बीवी या बेटी को वहां छोड़कर जाए, लेकिन फिलहाल उसके पिता की जान का मामला था तो जल्दी ही अमन वहां से गायब होकर एक बार फिर अपनी हवेली में पहुंच चुका था। उसके जाने के बाद दादा महाराज ने तारा परी की ओर देखते हुए कहा था, तारा परी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें जिन अंश की जरूरत है उस राक्षस का वध करने के लिए, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम जिन्नातों के बीच में रहकर ये बात तो समझ में आ गई होगी ना कि जिन अंश का इस परिवार के लिए होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम जिन अंश को हमेशा हमेशा के लिए लेकर अपने साथ चली जाती हो तो जिस तरह से आज अमरेंद्र जी की जान जा रही है, ठीक उसी तरह से करिश्मा और अमन और साथ ही साथ हमारी भी जान चली जाएगी और एक एक करके सफेद सफेद जिन धुएं के रूप में उड़ने लगेंगे और गायब हो जाएंगे। जैसे ही तारा परी ने ये सुना उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुम हो चुकी थी। वो हैरानी से कभी दादा महाराज की ओर देख रही थी तो कभी वो अपनी प्यारी सी खूबसूरत बेटी तराना की ओर देख रही थी और हल्के से कम कपाते हुए होठों से कहने लगी थी,
दादा महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? पहले तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तराना का मेरे साथ जाना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने तराना के साथ मिलकर उस राक्षस का वध नहीं किया तो वो राक्षस पूरे तीनों लोगों को नष्ट कर देगा। उसके बाद, आपका मतलब आप समझते हैं ना? ऐसा कहकर तारा दादा महाराज से कुछ रिक्वेस्ट करने लगी थी, लेकिन दादा महाराज कहने लगे थे, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझते हैं तारा परी, क्योंकि तुम्हारे कुलगुरु ने हमें सारी बातें बहुत पहले ही बता दी थी और तुम्हारा अमन की जिंदगी में आना तय था, क्योंकि ये भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी कि अमन की जिंदगी में कोई इंसान या जिन नहीं आएगा, बल्कि उसकी जिंदगी में बला की खूबसूरत परी आएगी। ये बात हम पहले दिन से ही जानते थे। तब तारा परी ने दादा महाराज के सामने दोनों हाथों को जोड़ लिया था और कहने लगी थी, दादा महाराज, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या करूं कि सफेद जिन्नातों को कभी भी किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी जिन को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। तारा की बात सुनकर दादा महाराज कहने लगे थे, बेटा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एक माँ हो और एक माँ के लिए अपनी औलाद से दूर होना बहुत बड़े दुख और दर्द की बात है, लेकिन तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। अब सफेद जिन्नातों और तीनों लोगों को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम तराना के अंदर शक्ति आने के तुरंत बाद उसे यहाँ से लेकर परीलोक में चली जाना और वहाँ उस राक्षस का वध करने के बाद तुम्हें तराना को वापस पृथ्वीलोक भेजना ही होगा। जैसे ही तारा परी ने यह सुना, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो बहुत ही ज्यादा तड़प उठी थी और अपनी प्यारी सी बेटी को लेकर उसने जोरों से गले से लगा लिया था और रोते हुए कहने लगी थी, ये आप क्या कह रहे हैं दादा महाराज, मैं भला अपनी बेटी के बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं अपनी तराना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी बेटी के बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आपने ऐसा सोचा भी कैसे लिया कि मैं तराना को वापस पृथ्वी लोक भेज दूंगी? नहीं नहीं दादा महाराज, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तारा परी की बात सुनकर दादा महाराज थोड़े से कड़क स्वर में बोले थे, हम अच्छी तरह से जानते हैं तारा परी कि इस वक्त तुम स्वार्थी हो रही हो, लेकिन तुम्हें स्वार्थ और भावनाओं को अलग रखना होगा और इस बार तुम्हें प्रैक्टिकल सोचना होगा।
तभी तारा परी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे और उसके आंसू मोती के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे थे और नीचे गिरकर छोटे छोटे बड़े ही खूबसूरत से पौधों के रूप में बदल रहे थे और उन पर बड़ा ही खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का फूल खिल उठा था। और धीरे धीरे तारा परी के आंसू जहाँ जा गिरे थे, वहाँ ढेर सारे फूलों का गुच्छा उमड़ आया था। ऐसा लगने लगा था मानो पूरे के पूरे बगीचे की सारी खूबसूरती तारा परी के पैरों में सिमट कर आ गई हो। तब दादा महाराज ने कड़क स्वर में कहा था, अब तारा परी, हमने तुम्हें इसका तरीका बता दिया है और एक और बात, तुम्हें अपनी कुछ अनूठी शक्तियों का प्रयोग करना होगा और अपने परी तारा को जागृत करना होगा, और परी तारा को जागृत करने के बाद तुम्हें उसकी शक्तियों से अमरेंद्र को जीवित रखना होगा जब तक कि जिन अंश का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। उसकी बाल अवस्था का कार्यकाल पूरा होने में अभी भी पूरे 4 दिन बाकी हैं, तो जब तक उसकी बाल अवस्था का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें अपने परी तारे की सहायता से अमरेंद्र को जीवित रखना होगा। और हम तुम्हें बाकी जिन्नातों को ठीक रखने का रास्ता बता ही चुके हैं और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस तरह से इन सारी चीजों को फेस करना होगा। ऐसा कहकर दादा महाराज गायब हो चुके थे और तारा परी ने अपनी बेटी को कसकर गले से लगा लिया था और अपनी बेटी के खूबसूरत से हाथों को लेकर उन्हें चूमने लगी थीं और कहने लगी थीं, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के बगैर एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैंने तो सोचा था कि उस राक्षस के वध के बाद मैं अपनी बेटी के साथ परीलोक में आराम से रहूंगी, लेकिन इस तरह से अपनी बेटी के बिना रहना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कहते हुए कितने ही सारे आंसू तारा परी की आंखों में आ गए थे और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसकी बेटी हल्का मुस्कुराई, तारा भी अब मुस्कुराने लगी थी और मुस्कुराते ही वे दोनों वहां से गायब हो चुकी थीं और गायब होकर सीधा अमन के घर में यानी कि बंगले में पहुंच गई थीं। और जैसे ही वे अमन के बंगले में गईं, तभी अचानक से करिश्मा जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी। अब तारा पूरी तरह से हैरान हो गई। जल्दी से जैसे ही वो करिश्मा जी के कमरे में गई, उसने देखा कि जो पहले थोड़ा थोड़ा धुआं अमरेंद्र जी के शरीर से निकल रहा था, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था, काफी मात्रा में निकलने लगा था। अब तारा परी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। तब करिश्मा जी कहने लगी थी, अमन कुछ करो, अगर इसी तरह से अमरेंद्र जी का इंसानी शरीर धुएं के रूप में निकलता रहा तो बहुत जल्द वे केवल कुछ ही घंटों में हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। जैसे ही अमन ने ये सुना, उसकी भी आंखों में खून के आंसू थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि जिन अंश की शक्तियां अभी जागृत होने में पूरे 4 दिन बाकी थीं और तब तक वे कैसे उसे ठीक कर सकते थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक तारापरी ने अमन से कहा था, अमन जी आप तराना बेटी को लेकर कमरे में जाइए, तब तक मैं करिश्मा मॉम के साथ रहती हूँ। अमन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को देखने के बाद वो उसे वहां से लेकर जाने लगा था। वहीं अमन सोचने लगा था कि उसे अपनी बेटी को इस तरह से अपने दादा की जान जाते हुए नहीं देखना चाहिए, तो यही सोचते हुए अमन दुखी मन से उसे कमरे में ले गया था। तब तारापरी ने करिश्मा जी को चुप रहने का इशारा किया था और तभी तारा एक जगह बैठकर कुछ कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। और तभी अचानक कहीं से बिल्कुल तारे के आकार में बड़ा ही खूबसूरत चमकता हुआ सा परी तारा वहां आ गया था। वहीं करिश्मा जी ने जैसे ही उसे परी तारे को देखा, वो कहने लगी, तारा परी ये क्या है बेटा, ये कैसे आया है यहाँ पर, इससे क्या होगा। तभी तारा करिश्मा जी को शांत करते हुए कहने लगी थी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है करिश्मा मॉम, ये एक परी तारा है, यानी कि ये मेरे अंश से बना है, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये कुछ भी कर सकता है, बस आप इंतजार कीजिए। ऐसा कहकर तारा परी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए परी तारे की ओर देखना शुरू कर दिया था और तारा परी की आंखों की रोशनी जैसे ही परी तारे में मिली, वो सीधा परी तारे की रोशनी अमरेंद्र जी के जिस्म में जाने लगी थी और धीरे धीरे जो सफ़ेद धुआं काफ़ी सारी मात्रा में उनके जिस्म से निकल रहा था, उस धुएं का निकलना अब धीरे धीरे कम होने लगा था। तब करिश्मा जी ने जैसे ही ये देखा, उसने राहत की सांस ली थी और तब तारापरी कहने लगी थी, वो करिश्मा मॉम ये परी तारा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देगा, अमन जी को ये दिखाई नहीं देगा, ये लगातार अमरेंद्र जी को रोशनी देता रहेगा और अपनी शक्तियों के द्वारा 4 दिनों तक उन्हें बिल्कुल ठीक और सही सलामत रखेगा। 4 दिनों के बाद जिन अंश की शक्तियां जैसे ही जागृत हो जाएंगी, उसके बाद हम उसके द्वारा पिताजी यानी अमरेंद्र जी को ठीक कर सकते हैं। तारापरी की बात सुनने के बाद करिश्मा जी एक बार फिर फूटकर रोने लगी थीं।